તારીખ 8/1/1994 શ્રી સમયસર કળશ 246 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 89
जो अन्य तत्व है पर तत्व भूत है उसका वियोग होता है, तो मात्र कह करके उनको निषेध कर दिया। ज्ञान मात्र में और भी बहुत बातें हैं, यह वो है कि द्रव गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव, ये बात इसमें नहीं लेनी है मात्र कह करके, मात्र कह करके ये बात नहीं लेनी है, वरना जो तत्व ज्ञान के अभ्यास करते हैं उनको पहला प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मात्र द्रव है गुण है के पर्याय है, क्या ज्ञान मात्र में ज्ञान के पर्याय हम समझे या त्रिकाली हम समझे, हम क्या समझे? तो कहते कि तीनों में से एक भेद भी नहीं ले रहा है, ज्ञान मात्र न द्रव्य का भेद स्वरूप है न गुण का भेद स्वरूप है न पर्याय का भेद स्वरूप है, ऐसा निर्भेद जो है वो ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र माने क्या कहना चाहते हैं पंचाध्यायी में ये विषय थोड़ा चला है, सूक्ष्म ग्रंथ है, सूक्ष्म तत्व का ग्रंथ है। तो हमारे जो विद्वान है अलवर में जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं अजीत कुमार जी करते हैं, हमारे आगरा के शिविर में आए थे, हमारे विद्वान तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें पंचाध्याय का अध्ययन करते हैं कि बहुत उलझन में पड़ गए, थोड़ा खोजी आदमी है। तो वहाँ बात ऐसी रही है कि जो आत्मा अनित्य है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन आत्मा नित्य है वो भी व्यवहार नहीं का विषय है, मां ऐसी बात चली है। पंचाध्यायी उत्तरार्ध गाथा 761-63 तीन गाथा एक साथ है, इनमें ये विषय चला है। तो उसको ये लगा कि अनित्य है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन नित्य आत्मा व्यवहार नहीं का विषय क्यों चला है? उन्होंने आगे ऐसा कहा वहां शास्त्रकार ने, कौन शास्त्रकार है वो आज कोई नहीं जानते, अपना नाम नहीं दिया है शास्त्र, आत्मा न नित्य है न अनित्य है, आत्मा तो अनुभव स्वरूप है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और हमारे वहां शिविर में एक विषय चल रहा था लक्ष्य लक्षण की कथा का, तो बात कोई उनकी उलझन के उत्तर रूप कोई बात ऐसे चल रही थी, हमको तो पता ही नहीं था कि वो कैसे उलझन में, वो उलझन में उतना था कि उसको निध नहीं आते थे, कहीं समाधान नहीं होता था। अपने सभी विद्वानों के पास वो चर्चा करने को चला गया खोज के लिए, सारे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े हैं सोनगढ़ सब जगह आ गया, कहीं भी इस चर्चा का उसको समाधान नहीं हो रहा था, 6 महीना निकल गया इसमें समाधान में आता है। तो मैं तो कैसे शास्त्र पढ़ता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, सबको सब सुनने को बैठते हैं, हमेशा 40-50 भाई बहने स्वाध्याय में शरीक होते हैं, शरीक बने उपस्थित होता है, वो उतना तकलीफ में आ गया मेंटली कि उसका 3-4 किलो वेट कम हो गया। तो परिवार वाले हमारा गए, एक तो सिंगल बॉडी का आदमी था, उसमें 3-4 किलो वेट डाउन हो गया, खाना अच्छी तरह खाई नहीं, उसमें वो धुन में रहे क्या है, रुपये स्वरूप में बात क्या है, हमारी कोई बात ऐसी चल रही थी कि देखिए जो लक्षण है वो तो पर्याय में उपयोग लक्षण है जी, उपयोग लक्षण से सनातन स्मृताय है जी, उपयोग तो लक्षण है, और उपयोग लक्षण वास्तव में महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया, वो पर्याय में है, और आत्मा हमको तो ध्रुव पहचान करना है, ध्रुव की पहचान करना है, अनादि से वो स्वरूप को नहीं जाना, हम ये पर्याय में मेल कैसे खाता है ध्रुव को समझने का। हम ये बात ले रहे थे अपने स्वाध्याय में कि देखिए ये पर्याय में आत्मा पर्यायत्व रूप नहीं है, तो त्रिकाली द्रव्य में द्रव्यत्व रूप नहीं है, क्योंकि पर्याय भी एक भेद है और द्रव्य भी एक भेद है और आत्मा अभेद निर्भेद है, निर्भेद है तो अभेद है। अगर जो केवल नित्य होता, हमारा मेंटल प्रोजेक्शन क्या है ध्रुव 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 का, ये तो पर्याय रहित है ना, इसलिए वो अकेला कोई ध्रुव का पिंड है। तो ऐसे हम स्वभाव को देखने को जाते हैं तो एक मेंटल मानसिक कल्पना होती है। अगर ऐसा ही होता तो उपयोग लक्षण में पाया नहीं जाता, ये स्वभाव उपयोग लक्षण में केवल नित्य होता तो अनित्य पर्याय में वो पाया नहीं जाता, हम वो बात चला रहे थे। और केवल पर्यायात्मक होता तो विनश्वर हो जाता, क्योंकि पर्याय तो विनश्वर है, इसलिए आत्मा केवल नित्य भी नहीं केवल अनित्य भी नहीं, अनुभव स्वरूप है। तो उनको लगा कि ये तो मेरी उलझन वाली बात है, तो वो ध्यान से सुनने लगे। स्वाध्याय पूरा हुआ था, हमारे कमरे में आए ग्रंथ लेकर के, ऐसा बात थोड़ी करनी बोलिए, डेढ़ साल से बहुत उलझन में है, पढ़ाई में है, शारीरिक इफेक्ट हो गई है, हमारी मेंटल इफेक्ट से उसमें आई, इसमें क्या बात तो सही है। आपका स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में है, क्योंकि गुण तो शक्ति रूप है ही, तो अनंत गुण का अनंत शक्तियों का एक अभेद रूप को तो अपन द्रव्य कहते हैं, इसलिए शक्ति को तो निकालने का सवाल नहीं रहता। और अनंत गुण अनंत शक्तियों का एक रूप तो अपन द्रव्य कहते हैं, द्रव्य स्वभाव कहते हैं, तो द्रव्य गुण तो आएगी। आपको जो तकलीफ है वो तो पर्याय की है, पर पर्याय का आश्रय लेना नहीं है, पर्याय का लक्ष्य करना नहीं है। और यहाँ जो चलती है उपयोग लक्षण में से आपको तकलीफ होती है, आपके प्रवचन में जो वो बात है वो हमको तकलीफ वाली है, बाकी तो सब ठीक समझ में आती है, लेकिन नित्य भी नहीं और अनित्य नहीं, अनुभव स्वरूप है, वो बात दिमाग में बैठती नहीं है। मैंने कहा कि स्वभाव व्यक्त होने का स्थान कहाँ है, स्वभाव कहाँ प्रदर्शित होता है, उपयोग ज्ञान गुण के पर्याय है या ज्ञान गुण के पर्याय भी नहीं है, क्या आनंद गुण के पर्याय है, क्या अस्तित्व गुण के पर्याय है, किस गुण के पर्याय, तो ज्ञान गुण के पर्याय है। क्यों ज्ञान गुण के पर्याय, कि ज्ञान गुण इसमें प्रकट होता है, ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति है इसमें। जैसे हम कहेंगे कि पावर में ठंडी गर्मी नहीं है, लेकिन पावर समझा जाता है कैसे, कि इसमें ठंडक होती है, इसमें गर्मी होती है, इसमें लाइट होती है, इसमें पंखा चलता है, तो पावर है। तो उसकी कोई अभिव्यक्ति पावर को समझाने के लिए है कि नहीं है, गर्म होना वो पावर नहीं है, ठंडा होना वो पावर नहीं है, लेकिन पावर को पकड़ सकते कि मैं यहाँ पर्याय सिरा कैसे पकड़ोगे आप अभिव्यक्ति, वायर में करंट चलता है कैसे पकड़ोगे आप, तो कहीं भी वो व्यक्त होगा वहां से पकड़ोगे आप, स्पर्श करने से जनजनाटी होती है। ऐसे सामर्थ्य को स्वभाव को शक्ति को समझने के लिए पर्याय इसमें कोई आधार तो है नहीं। तो आप पर्याय को खोज के काल में, निश्चित निर्णय के काल में भी आप पर्याय को पहले से उड़ाना जाओगे उड़ाओगे तो आपको कहां से पता, कहां से मिलेगा। जब आपके पास किसी व्यक्ति का पता ही नहीं है, पक्का ढूंढोगे उसको, एड्रेस तो चाहिए कम से कम, इससे पहले तो घूमने रहता होगा तो भी आप उधर उधर जाएंगे, आदमी रहेगा आपने पड़ोस में, रात खोजेंगे सारे सिटी को, वो आदमी कहाँ रहता है, आदमी कहाँ रहता है, क्योंकि आपके पास पता नहीं है। ये पता निकालने के लिए उपयोग लक्षण है, और वहां स्वभाव है जो ज्ञान वेदन है, वो अनुभूति स्वरूप है, और वेदन स्वरूप से वेदने में आए तो वही आत्मा है। स्वरूप से वेदन में आने वाला ज्ञान, स्वेपना से वेदन में आने वाला ज्ञान भी आत्मा है। आपको कहीं उधर उधर नहीं जाना है, कल्पना नहीं करने के ध्रुव ऐसा है ध्रुव ऐसा है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव तक पहुंचने की, त्रिकाली तक पहुंचने के यही चैनल है, दूसरे कोई चैनल नहीं है,
सीधा कनेक्शन है,
एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है और सब कल्पना है ऐसा समझता है, दूसरा जो कुछ है वो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसे ही प्रैक्टिकली काम होता है, दूसरे ढंग से होता ही नहीं। इसलिए वहां अनुभव स्वरूप कहा, इसका मतलब न नित्य है न अनित्य है। तो हमारे इस स्वाध्याय में कभी ये बात निकलती है तो कोई विद्वान भी होते हैं तो फिर हम ये कहें कि अनुभव स्वरूप कहने में तो आप अनुभव स्वरूप क्यों लेते ऐसा ले ले तो पंचाध्याय कार है, उसने उभयात्मक क्यों नहीं लिया, अनुभव स्वरूप क्यों लिया, क्योंकि उभय स्वरूप है वो प्रमाण का विषय है, जबकि हमारा परमार्थ भूत तत्व प्रमाण का विषय नहीं है, इसका भी निषेध है इसमें। बात तो समझदारी के उभय स्वरूप नहीं कहते के अनुभय स्वरूप क्यों कहते हैं, सारा संसार में भी ये बात कहने का अभिप्राय है। ज्ञान मत कह करके न द्रव्य को लेना है न गुण को लेना है न पर्याय को लेना है, उसी का नाम ज्ञान मात्र है, ऐसी बात है। और उसका कोई स्पष्ट विषय मिलता है समय साहब में, कहा मिलता है, 25 कलश 26 कलश लिखे हैं 143 कथा के पास में, शुद्ध भी नहीं में अशुद्ध भी नहीं में एक भी नहीं में अनेक भी नहीं, मैं करता भी नहीं मैं भोगता भी नहीं आया कि नहीं सब आया, नित्य भी नहीं अनित्य भी नहीं, ये बात क्यों कहनी, ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी, कि जहां तक वो एक हूँ अभेद हूँ ध्रुव हूँ द्रव हूँ वहां तक उसका मेरे को मिल जाएगा, ये मानसिक प्रक्रिया होती है ना भेद वाली, और वहां वहां तक अनुभव नहीं होता। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के भेद को ज्ञान में जब निरस्त किया जाता है तभी ज्ञान मात्र का होता है, और ये आत्मा है फिर होता है ये आत्मा है, ये इस विषय की सूक्ष्मता है, क्योंकि जो स्वभाव है वो द्रव्य में है, गुण में भी है, पर्याय में भी है, पर्याय में भी तीनों में व्याप्य व्यापक रूप है, और तीनों में तीन टुकड़ा नहीं है, द्रव्य का टुकड़ा अलग गुण का टुकड़ा अलग पर्याय का टुकड़ा अलग, ऐसा नहीं है, जैसे हार में डोरी का टुकड़ा नहीं है कि ये पहले पारा का टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये पहला मोती का टुकड़ा ये दूसरा मोती का टुकड़ा, ऐसा नहीं है, सलंग है जैसा जोरा
अखंड
ऐसा ही आत्मा जो है वो द्रव्य गुण पर्याय में सलंग है। हिंदी में सलंग कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरी
माला,
माला में जो दूरी होती है मोती तो एक एक होते हैं और जो दूरी हो वो सलंग, सलंग में
माला होती है,
नहीं
माला माला तो मोती और दूरी दोनों मिलके माला
कंटिन्यू जो है,
अब मोती तो एक एक है
कंटिन्यू
और दूरी कोई एक एक मोती की अलग अलग है क्या कि नहीं है,
पूरा
सलंग है,
सलंग ही बोलते हैं
ना, ऐसा सलंग है ये, क्या आत्मा द्रव्य गुण पर्याय में सलंग है, इसलिए उसको द्रव्य का टुकड़ा करे गुण का टुकड़ा करे पर्याय का टुकड़ा करे तो ये अनुभव में
नहीं
आता, तो हम कहेंगे कभी शास्त्र में तो द्रव्य गुण पर्याय की बात बहुत चली है, ये भी एक तर्क है, कुछ स्तर उसका भी है, जहां तक वस्तु का स्वरूप बंधारणीय दृष्टि से समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो द्रव्य पर्याय से वस्तु व्यवस्था समझनी पड़ती है, उसको अध्यात्म के दृष्टिकोण में अन्वेषण काल कहते हैं, खोज का काल कहते हैं, वो गाथा लिया नए चक्र की 268 गाथा, તક્ષણ કાળે યુક્તિ મગીણ યુક્તિ માર્ગ મેં દ્રવગુણ પરિવાર છે અન્વેષણ કાલ મેં સમજ મેં આતા હૈ નો આરાહણ સમયે આરાધના કે કાલ મેં નહીં ખોજ કે કાલ મેં બાતે આરાધના કે નો આરાધના નો આરાહણ સમયે પછકો અનુભવ કરવા આત્મા પ્રત્યક્ષ હોતા હૈ વાત પ્રત્યક્ષ મેં ભેદ કરને કી જરૂરત નહીં હૈ પરોક્ષ મેં યે દ્રવગુણ પર્યાય વાલા ભેદ હોતા હૈ और ये अन्वेषण काल का विषय है ये अनुभव काल का विषय है दोनों का स्तर ही अलग अलग है वो बात स्पष्ट में चक्र में किया है माइल धवल आचार्य उन्होंने ये ग्रंथ बहुत बड़ा लिखा है करीब 500 गाथा है तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य महाराज टोटल लगाते हैं सारा समय सार का टोटल इस प्रकार से आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ इतनी लंबी चौड़ी बात करके निश्चय क्या हुआ कि आत्मा ज्ञान मात्र है मैं ज्ञान मात्र हूँ आत्मा मैंने मैं अहम इति आत्मा मैंने कौन अहम इति
कितना
मैं ज्ञान मात्र बस
इतनी बात समझाइए पूरे समय सार
कि सारा समय सार ज्ञान मात्र में पूरा हो जाता है श्रवण बिल्कुल गए थे कोई निवृत्ति के दिनों में तो बेंगलोर होके जाना पड़ता है तो बेंगलोर में बहुत मजे मिल गए उनको कोई सूचना मिल गई तो वो स्टेशन पर आ गया तो बेंगलोर में रोक लिया स्वाध्याय सुबह मंदिर में चला 15-20 मिनट लेट आए स्वाध्याय में तो वही कोई वैसा ऐसा ही ज्ञान मात्र वाली कोई बात चल रही थी मैं क्या भाई आप तो 6 लाख को तो लफड़ा बहुत है स्वाध्याय में भी टाइम सरसरी हो सकते नहीं है अब ये 415 कथा वाला समय सर आपके दिमाग में रहने की जगह ही नहीं है इतनी बातें भरी है कि ये 415 गाथा वाला समय सार आप दिमाग में कैसे रखोगे बहुत लंबी छोड़ी बातें किया है फिर भी एक सुविधा है एक शब्द की जगह है दिमाग में आचार्य महाराज ने वो बात भी कर दी है कि सारा सार एक ज्ञान मात्र में पूरा होता है इसको जैसा है वैसा भीतर में देखो देखने का कोशिश करो प्रत्यक्ष है क्या प्रत्यक्ष है उसको तुम प्रत्यक्ष करो आत्मा तो ज्ञान मात्र है तो 415 का टोटल आ जाएगा वरना तो तुम्हारा तो कोई जगह ही नहीं है दिमाग में मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई इतना वॉल्यूम बड़ा रखने की तो कोई जगह नहीं दिखती मुझे तो लेकिन एक सुविधा है ज्ञान मात्र को समझो समझ करके भीतर में देखो समझने के लिए ये लॉजिक वगैरह है सर लॉजिक ही देंगे इसके और फिर भीतर में देखो निविड़ा हो जाएगा आराधना हो जाएगी क्या
जी
आराधना हो जाएगी
बराबर
आराधना में लंबा चौड़ी विचार नहीं है वो विचार काल में लंबा चौड़ा विचार चलता है तो थक जाता है आराधना के काल में लंबी चौड़ी विचार की परिस्थिति नहीं है वहाँ तो अपने ज्ञान वेदन से अपने मैंने स्व संवेदन से ज्ञान मात्र में सावधान होना है बस वेदन से ज्ञान मात्र में सावधान हो जा बस ये आराधना है और कुछ आराधना इतनी संक्षेप वाली बात है कहने में भी इतनी संक्षेप वाली बात है परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है कहने में उतना भेद पड़ता है परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है
वेदन में ज्ञान मात्र आना चाहिए
ज्ञान मात्र स्वसंवेदन स्वरूप है જ્ઞાન માત્ર સંવેદના સિદ્ધિ સિદ્ધિ મને પ્રાપ્તિ જ્ઞાન માત્ર હૈ લેકિન કહા પ્રાપ્ત હોતા હૈ કે સ્વસંવેદન મેં પ્રાપ્ત હોતા હૈ વો ઓર જગત તો પ્રાપ્ત હોતા નહીં વો રહેતા ભી નહીં રહેતા ભી સ્વસંવેદન મેં પિછલી ઇધર લિખા હૈ પરિશિષ્ટ મેં કે જ્ઞાન માત્ર સ્વસંવેદન સિદ્ધત્વાત સ્વસંવેદન મેં વો પાયા જાતા જ્ઞાન માત્ર યહાં પાયા જાતા
ઇતના શોર્ટેસ્ટ કષ્ટ હૈ
એકદમ બાયપાસ સર્જરી સબ નિકાલ દો આગે પીછે વાલી આંટી કે સીધી સાદી લાઈન હૈ પ્રત્યક્ષ કર લો વેદન પરોક્ષ હોઈ નહીં સકતા પ્રત્યક્ષ હૈ ઉસકો પ્રત્યક્ષ કરના હૈ પ્રત્યક્ષ નહીં હૈ ને પ્રત્યક્ષ કરના હૈ વો નહીં હૈ પરોક્ષતા કા પર્દા હટાના હૈ વસ્તુ તો પર્દા કે પીછે પ્રત્યક્ષ હૈ ઉતની બાત હૈ બિલકુલ બાત કૈસા ટોટલ લગાયા
એકદમ સમરી કર દીયા
એક ચરણ મેં બાત રખી હૈ
હમકો કહેના હૈ સમયસાર
સમયસાર મેં ઇતિ કરકે હમકો તો જ્ઞાન માત્ર નિશ્ચિત કરના હૈ દૂસરા હમકો કુછ કરના હિ નહીં સારા સમયસાર મેં હમરા જો અભિપ્રાય હૈ જ્ઞાન માત્ર કો નિશ્ચિત કરાને કા અભિપ્રાય હૈ નિશ્ચિત કરના કહો નિશ્ચય કરના કહો ભાવવાસન કરાના કહો વેદન કરાના કહો એકી વાત જ્ઞાન માત્ર નિશ્ચિત હુઆ કે જો જ્ઞાન માત્ર તત્વ અખંડ હૈ એક હૈ અચલ હૈ ઓર સ્વસંવેદ્ય હૈ ઓર અબાધિત હૈ ઇતની વિશેષ ઓર લીએ તો કૈસા હૈ ચારો ઓર સે દેખો તો કે ઉસમે ખંડ નહીં હૈ અનેક નિયાકાર હોને પર ભી ઓર ખંડ ખંડ જ્ઞાન મેં પ્રકાર પડતે હુએ ભી જ્ઞાન મેં ખંડ હોતા
નહીં
લીખ્યા વર્તમાન પર્યાય મેં કૈસી અખંડતા પડતી જ્ઞાન મેં અનેક ન્યાય ક્યા જ્ઞાન ખંડિત હો
ગયા
જ્ઞાન મેં અનેક ન્યાય જ્ઞાન મેં ટુકડા હુઆ ક્યા જ્ઞાન જ્ઞાન રહા પાણી મેં ઇતને તરંગ હુએ ઇતના પાણી હો ગયા ખંડ ખંડ
નહીં
સભી તરંગ હોતે હુએ ભી પાણી અખંડ હૈ છોટે મોટે અનેક તરંગ હોતે હુએ ભી પાણી તો પાણી રૂપ સે અખંડ હી હૈ એસે અનેક ભેદ રૂપ જ્ઞાન હોને પર ભી જ્ઞાન કી અભેદતા કો ભેદ સકતે નહીં ક્યા નિયાકારો કે ભેદ જ્ઞાન કે મતિ શુદ્ધ અવધિ મન પર્ય કેવલ આદિ કે ભેદ અલ્પજ્ઞ સર્વજ્ઞ કે ભેદ કોઈ ભી ભેદ જ્ઞાન માત્ર કો ભેદ સકતા એસી કા નામ જ્ઞાન માત્ર હૈ સબ હર જગ્યા જ્ઞાન માત્ર હી રહેતા હૈ
વો કોમન
હા કોમન ફેક્ટર એકદમ લે લેના જ્ઞાન કા કોમન ફેક્ટર એ જ્ઞાન માત્ર વો અપના રૂપ હૈ અપનત્વ હોતે હી આત્મા આગે આત્મા અનુભૂતિ સ્વરૂપ હૈ વેદન સ્વરૂપ હૈ એક હૈ અચલ હૈ જ્ઞાન રૂપ સે ચલાયમાન નહીં હોતા અન્ય રૂપ હોતા નહીં ઓર અપને સે હી વેદન મેં આતા હૈ સ્વસંવેદ્યમાન મેને અપને સે હી વેદન મેં આતા હૈ ઉસકો વેદન મેં લેને કે લીએ સાધનાંતર કી અપેક્ષા નહીં હૈ કે કોઈ સાધન મિલ જાય તો સ્વસંવેદન હો જાય એકાંત તો મિલના ચાહીએ કે નહીં મિલના ચાહીએ સ્વસંવેદન કે લીએ
કોઈ શરત
નહીં ઉનકો એકાંત નહીં મિલતા હૈ પ્રસંગ મેં બેઠે હુએ શ્રીજી કહેતા ને આપ લોગ दिगंबर में वो पद्धति है, भगवान को श्री जी कहते हैं, समोसरण में श्री जी विराजमान है, ऐसा कहते हैं पद्धति है शिव गुरुने की। श्री मैंने लक्ष्मी अनुज गुणों की लक्ष्मी लक्ष्मी वाले हैं, इसलिए वो सब पड़े रहते हैं और हाथ भीतर में चला जाता है, अनुभव में चला जाता है तो बाहर में सब रह जाते हैं। कोई साधन की अपेक्षा स्वसंवेदन को
नहीं है,
सत्संग तो इसके पहले की बात है, तो उसके प्राथमिक स्तर की बात है। अनुभव के कारण में तो सत्संग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वसत का संग है। इसलिए क्या है और वही वास्तव में सत्संग, ऐसी चर्चा जहाँ हो वो व्यवहार सत्संग है। मूल में निश्चित सत्संग को अपना सत का संग वही सत्संग है। तो सत्संग कर लिया कि नहीं कर लिया? अनुभव हुआ तो सत्संग कर लिया, अनुभव नहीं हुआ तो नहीं किया। और अबाधित है, किसी भी तर्क वितर्क कुतर्क से उसमें कोई बाधा पहुंचा सकते
नहीं है।
भावार्थ यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही है ऐसा कहा है। इसका कारण इस प्रकार से है, स्पष्टीकरण देते हैं आचार्य महाराज ने। इस समय सार में आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा? ज्ञान ही मैंने ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा? इसका कारण हम देते हैं, उसको समझाना चाहते हैं। एक तो आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत गुण धर्म है, उसका तो हम निषेध करते
नहीं,
ज्ञान मात्र कह करके अवैध रूप से सभी भेद को हम समावेश
करते हैं।
लेकिन उस धर्म से बात क्यों नहीं करते हैं? अनंत धर्म में से एक ज्ञान को पकड़ करके दूसरा छोड़ करके हम क्यों बात करते हैं? दूसरे धर्म से क्यों बात नहीं करते हैं? तो इसमें कारण वो है कि कितने तो साधारण मैंने कॉमन है अस्तित्व, जो श्रद्धा का विषयभूत है वो धर्म अस्तित्व है। श्रद्धा अस्तित्व को ही ग्रहण करती है, लेकिन पहचानने में वो काम में आता
नहीं है।
क्यों? तो अस्तित्व आत्मा में भी है और दूसरे पांचों द्रव्य में है, तो भिन्न आत्मा की पहचान नहीं होगी। जैसे इतने बैठे हैं मिस्टर फलाना भाई कौन, तो उसका एक स्पेसिफिक अलग लक्षण देखना पड़ेगा कि भाई जो मिस्टर टोपी पहना है वो हो गए ऐसा लक्षण, क्योंकि दूसरों ने नहीं पहनी, इसलिए दूसरों ने भी पहनी हो तो वो लक्षण काम में नहीं आता, क्योंकि कॉमन हो गया साधारण। ऐसे पांचों में ज्ञान है वही असाधारण है, दूसरे सब साधारण है। इसलिए वे अति व्याप्ति वाले हैं। ऐसे गुणों से आत्मा की पहचान हो सकती नहीं, निश्चय हो सकता नहीं, पहचान हो सकती नहीं, लक्ष्य हो सकता
नहीं,
प्रतिभास नहीं आ सकता। और कितने धर्म तो पर्याय आश्रित है, किसी अवस्था में है किसी अवस्था में नहीं होता। जैसे राग है तो पांचों में राग नहीं है, लेकिन आत्मा के सभी पर्याय में राग नहीं है, सिद्धालय में राग नहीं है सिद्ध भगवान को, तो क्या वह आत्मा नहीं है? लक्षण तो निर्बाध लक्षण होना चाहिए, यहाँ बाधा आती हो वो लक्षण लक्षण कहा जाता
नहीं है।
इसलिए वो अति अव्याप्ति दोष है, उसमें व्याप्त नहीं है, लक्षण की व्याप्ति नहीं है, ऐसा अव्याप्ति पड़ा है उसमें है। इससे मेरी आत्मा पहचाना जाता
नहीं।
और गुरुदेव प्रवचन करते हुए और बात लेते थे कि आनंद है वो आत्मा में है, सुख है आत्मा में है, दूसरे पांच में नहीं है। वो विशिष्ट लक्षण होने पर भी उसकी पर्याय विपरीत है, इसलिए यहाँ से पहचाना जाता नहीं। वो खुलासा करते हैं, जयचंद जी ने नहीं किया है, गुरुदेव करते थे। सुख का पर्याय दुख रूप है अभी, तो दुख से सुख कैसे समझाया जाएगा? इसलिए अशांति है, शांति कैसे समझ आएगी? आत्म शांति क्या होती है? अब कहते हैं कि चैतन्यपणा जो शक्ति रूप है, चैतन्य स्वभाव, यद्यपि आत्मा का लक्षण है तो भी शक्ति मात्र है और दृष्ट प्रकट नहीं होने से अदृष्ट है, दिखता नहीं है, अनुमान करना पड़ता है। अनुमान से काम नहीं होगा, अनुमान अनुमान का विषय नहीं हो सकता, अदृष्ट है, इसलिए त्रिकाली स्वभाव भी लक्षण नहीं है, ऐसा कहते हैं। त्रिकाली चैतन्य स्वभाव भी आत्मा का लक्षण होने पर भी पहचान के काम में नहीं आता है, लक्षण इसलिए लिया कि वो विशिष्ट है, फिर भी जो शक्ति मात्र है इसलिए पहचान के लिए उसका कोई काम ना, उसका उपयोग होता तो निकम्मा है, पहचान के स्तर में वो निकम्मा है, पहचान यहाँ से नहीं हो सकती। जो चैतन्यपणा है वो पारिणामिक भाव के रूप में, पारिणामिक भाव है वो लक्षण नहीं है पहचानने के लिए, नियम सार में तो आएगा आत्मा पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप लक्षण है, तो वहाँ भावना का विषय चला है, वहाँ पहचान का विषय
चला है,
इसलिए वहाँ लक्षण शब्द का अर्थघटन स्वरूप स्वरूप लेना है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है, परम पारिणामिक भाव लक्षण आत्मा है, मतलब स्वरूप आत्मा है, लक्षण का स्वरूप वहाँ होता है, वहाँ चिन्ह नहीं होता है, यहाँ लक्षण का अर्थ चिन्ह है, ऐसी बात है। शब्द तो एक है, कौन सा प्रकरण चलता है वो समझ में नहीं आएगा, हमारे कभी ऐसा चलता है, विद्वानों में तो बहुत तर्क चलता है। देखो भी ये उपयोग लक्षण कहा ने उमा स्वामी ने, वो तो पर्याय में है, ये व्यवहार लक्षण है, हमको व्यवहार का कोई काम नहीं है, उसको ग्रहण कर दो। और नियमसार में आत्मा परम पारिणामिक भाव लक्षण का, हाँ वो सही सच्चा लक्षण है, क्योंकि वो निश्चय लक्षण है, गड़बड़ होगी। जब तक प्रैक्टिकल साइड में कोई मुमुक्ष नहीं जाता तो फिर वो कल्पना करके, शास्त्र के शब्दों में कल्पना कर कर करके फिर उसका व्रत घटन बिठाने लगते हैं, ये बात हो जाती है कि कल्पना का विषय
नहीं है,
ऐसी बात
है।
वहाँ प्रकरण खुद खुद भगवान की आत्मभावना का चल रही है, खुद भगवान ने को पहचानने का बाकी नहीं है, ये तो मुमुक्षु की भूमिका में पहचानने का स्तर है।
जी
पहचान लिया, अनुभव हो गया, फिर छठे साथ में तक पहुँचे हैं और वो अपने स्वरूप की भावना पा रहे हैं, शास्त्र लिखा है इसलिए
अपनी भावना के लिए,
मेरी भावना के लिए शास्त्र लिखना
है।
आप लोगों को ऐसी भावना हो तो साथ में चल जाओ, स्वरूप भावना में आ जाओ, पर ना मैं तो मेरी भावना के लिए लिख रहा हूँ।
स्पष्टता की है,
स्पष्टता की है, नहीं की है तो समझ में आ सकता है, ऐसा वो ग्रंथ है। उस स्पष्टता तो हमने तो बाद में देखी है, पहले समझ में आया कि ये तो भावना का विषय चलता है, पिछली गाथा देखे जा रहे हैं तो खुद ने स्पष्टीकरण दे दिया है,
मूल गाथा में भी,
हाँ मूल गाथा,
मूल गाथा में
गाथा तो भी है, मेरी भावना की अवशिष्टता
है, मेरी भावना चैतन्य दर्शन में
હા દર્શન જ્ઞાન
દર્શન જ્ઞાન દર્શન કરી નાખું
જ્ઞાન હા એવું કહે એ કહેંગે ચૈતન્યતા લક્ષણ હૈ તો ભી શક્તિ માત્ર હૈ અદ્રષ્ટ હૈ ઉસકી વ્યક્તિ દર્શન ઓર જ્ઞાન હૈ ઉસમે ભી દર્શન ઓર જ્ઞાન મે ભી જ્ઞાન સાકાર હૈ પ્રગટ અનુભવ ગોચર હૈ દર્શન નિરાકાર હૈ પ્રગટ અનુભવ ગોચર
નહીં હૈ
એ વાત હૈ इसलिए ज्ञान लक्षण लिया है दर्शन लक्षण नहीं लिया कोई चर्चा चली सुबह इसमें से तो वो बात चली है बात चली जब तो ये उपाध्याय में लिया दर्शन को क्यों लक्षण नहीं कहते ज्ञान को क्यों लक्षण कहते ये सवाल चला प्रश्न चला क्योंकि वो ग्राह्य नहीं है निराकार होने से उसका ग्रहण नहीं होता है अवग्रह यह अवाय धारणा है मति ज्ञान का चार स्टेज पड़ता है मति ज्ञान पहले उत्पन्न होता है फिर शुद्ध ज्ञान होता है तो मति ज्ञान में चार स्टेज है इसमें अवग्रह यह दो में तो अजीब ज्ञान भी पकड़ने में नहीं आता अवाय के स्टेज में पकड़ने में आता है तीसरे स्टेज में तो दर्शन उपयोग तो इसके पहले पूरा हो गया तो क्रम से होता है पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग तो जब अवग्रह यहाँ नहीं पकड़ में आता है तो दर्शन उपयोग तो आएगा ही कहाँ से तो कोई अपना दर्शन उपयोग को पकड़ सकता
नहीं
ये जो ऐसे चक्षु दर्शन देते वो ज्ञानोपयोग है इसके पहले दर्शन उपयोग हो जाता है फिर ज्ञानोपयोग को हमको समझ में आता है कि मैंने उसको देखा ये बात बहुत सुंदर लिया है
लक्षण करते हुए भी पीछे मकड़ी राखी दर्शन
लेना ज्ञान में ज्ञानोपयोग लेना है दर्शनोपयोग लेना ही नहीं है उपयोग और लक्षण ज्ञानोपयोग ही लेना है दर्शनोपयोग लेना ही नहीं है और ज्ञानोपयोग में ज्ञान सामान्य लक्षण होता है ज्ञान विशेष नहीं लेना है अंतरंग लक्षण लेना है ज्ञान का अंतरंग पकड़ना है ज्ञान सामान्य अंतरंग है और ज्ञान विशेष बहिरंग है नहीं 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 उपयोग का बात चलता है
उपयोग सीधे सामान्य आयोग
उपयोग जो है उसमें दो अंग है इसका एक उपयोग को दो अंग है जैसे हमारे पंचांग है तो पंचांग नमस्कार करते हैं आठ अंग है तो अष्टांग नमस्कार करते हैं ऐसे उपयोग को दो अंग है उपयोग अंगी उपयोग के दो अंग अंतरंग और बहिरंग अनेक ज्ञेयों का आकार वाला जो ज्ञाकार उपयोग है वो बहिरंग है और ज्ञ 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 ऐसा सामान्य जो है वो उसका अंतरंग है और वेदन वहाँ है सामान्य में वेदन है विचार ज्ञान में कहा वेदन आता है ज्ञान अनेक ज्ञान में आता है उसमें वेदन क्या आता है अनेक नई ज्ञान में आता है और आत्मा एक रूप है और ज्ञाकार ज्ञान तो अनेक रूप है मेल का खाता है लक्षण लक्षण
बीजी तो बहिरंग नहीं अंतरंग जो बड़े होते अंतरंग बड़े होते
अंतरंग वही इसका लक्षण है बढ़ना तो फिर वो विशेष वाला बढ़ेगा वहाँ क्या जब मेरा ज्ञान सामान्य ही स्वरूप में हूँ ऐसा सदृश स्वरूप में हूँ क्योंकि वो एक रूप है अनेक रूप है नहीं ज्ञाकार ज्ञान अनेक रूप है ज्ञानाकार ज्ञान तो एक रूप है पर आत्मा भी एक रूप है इसलिए सदृश है आत्मा के मुख्य मुख्य सभी लक्षण इसमें पाए जाता है एक रूपता प्रत्यक्षता निर्विकल्पता विशेष में विकल्प है सामान्य में कहाँ विकल्प है और ये अंत तत्वपणा जब वो विशेष ज्ञान ऐसा अंदर में बढ़ता है तब पता चलता है कि सामान्य ऐसा है वेदन ऐसा है वेदन को ग्रहण करने वाला तो ज्ञान विशेष होता है वेदन सामान्य में तो मैं त्रिकाल अंतर्मुख स्वभावी हूँ भी तभी पता चलता है वेदन वेदक स्वभावी हूँ वो भी तभी पता चलता है प्रत्यक्षपणा का भी वहां से पता चलता है निर्विकल्पता का भी वहां से पता चलता है वरना त्रिकाल निर्विकल्प है वो कैसे समझा जाए, अनुमान करके समझना पड़ेगा। ये प्रगट है निर्विकल्प, जो ज्ञान सामान्य है वो तो निर्विकल्प है।
वही
ज्ञान से दिशांतर करेगा, प्रकट करने लायक नहीं थी इसलिए गुरुदेव ने प्रकट नहीं की। उनको थोड़ा जो प्रश्न आपने किया वो मैंने गुरुदेव को बोला था, उसके चैम्बर में जाते कभी तफी चर्चा निकाले थे। ये जो भावनाशन के काल में जो स्वसन्मुख हुआ ज्ञान, जो ज्ञान विशेष उधर जाता था तो उधर आया, अपने को पहचाना, तो देशांतर तो हुआ लेकिन जात्यंतर हुआ कि ठीक था। वो तो बात तो वहां तो बराबर है लेकिन यहाँ जात्यंतर क्यों नहीं, तो जात्यंतर है लेकिन हम कहते नहीं बोलते नहीं, समझना है तो है
अपनी पद्धति ना हिसाब
फिर वो स्पष्ट कर देगी। आपने आप भी ना पूछे क्यों कि हमारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं बहुत करते हैं और हमको आत्मा का निश्चय है, आत्मा ऐसा ही है, गुरु कहता है शास्त्र कहता है ऐसा ही हमको लगता है, तो फिर हमारा ज्ञान जात्यंतर हो गया, ऐसा मुक्सूर नहीं लेगा, उसको नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कहते। चर्चा को निकालते थे प्रसिद्ध में, वो चर्चा कभी हमने एक प्रश्न किया था मुंबई में, इसका उत्तर नहीं देंगे वहां तो वो चिट्ठी भेजते थे, पर्ची भेजते थे, वहां तो भेज देते नहीं, नहीं देते, तो उल्टा करके वही प्रश्न पूछा तकलीफ से। एडवोकेट लोग करते हैं ना, इधर से पूछे उधर से पूछे उधर से पूछे, सामने उसको अंतर क्यों कर लिया, किसी पंक्ति में जाए उन्होंने बोले बुला के नहीं, ये तो रोका हुआ प्रश्न है इसका उत्तर नहीं देंगे, पता नहीं था कौन पूछ रहे थे वो, तुम्हारे तो कुछ पर्ची में तो पता नहीं किसकी पर्ची आते हैं, सैकड़ों आदमी बैठे हुए थे तो रौनक में पंडित सी फेस पर रौनक के मकान में थे ना, रबड़ी बैठे ठहरे हुए थे गुरुदेव उसके प्रांगण में, रात्रि चल रही थी रात को, तो हमने पूछा प्राइवेट में तो बात हो गई थी, तुम बात गायन में ऐसी बात नहीं करते हैं, तो मैंने कहा खोले किसी का नसीब हो कोई निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकलेगी तो गुरुदेव सतर्क बहुत थे, उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं इसको जाने दो, इसे इस प्रश्न को जाने दो, छोड़ दिया तो हमने थोड़े दूसरे ढंग से उसको रखा, दूसरे ढंग से रखा तो गुरुदेव को तो पता चलता ही है क्या पूछना चाहता है, बोला नहीं वो तो वो का वो प्रश्न है, जाने दो उसको, ऐसा करके
न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश है ना, एडवोकेट को बरोबर समझ जाए
तो समझे नहीं तो बैठे कैसे,
बराबर न्यायाधीश है
एडवोकेट तो खड़ा रहना पड़ता है, वो बैठे बैठे लेटा है सलाम पता पड़ता है, आते हैं तो खड़ा हो जाता है, एडवोकेट बैठा है न्यायाधीश आता है तो उसको खड़ा होना पड़ता है, हाँ खड़ा होना पड़ता है कि नहीं होता,
एकदम पसवाड़ी बोलना पड़े,
हैं
पसवाड़ी सलाम करने बोलना पड़े पचीन की बस,
अच्छा सो बोले
नहीं
करना पड़ता है, जिससे न्याय लेना है इससे उपदेश लेना है,
ये वक्त कौन चली जाए વ્યક્તિ નથી ઉપરથી આગળ પૂછતો છે એને એની મેળે ભગવાન એને એને ઉપસે એ જજમેન્ટ આપશે, કોઈ પણ સાંભળશે
ડિસ્ક્રિશનરી પાવર, ન્યાયાધીશ કો ડિસ્ક્રિશનરી પાવર, ડિસ્ક્રિશન અપના લેતે નિર્ણય અપના કરના હૈ, બાત દોનો કી સુનેગા, દોનો કા સબૂત ભી આયેગા, વિટનેસ ભી આયેગા, અપને અપને બાત કા સબૂત, અપને અપને બાત કી વિટનેસ ઓર અપને પ્રેઝન્ટેશન, फिर किसकी मानना और किसके नहीं मानना, दोनों में से एक की मानेगा दूसरे की नहीं मानेगा, उसको पावर दिया गया है, तो डिस्क्रिशनरी पावर
रोक सकते
અમારે જો અધ્યાત્મ કે શાસ્ત્ર સુપ્રીમ કોર્ટ કા ન્યાયાધીશ ભી પડા રહ્યા ત્યાં નિકાલતા નિર્દોષ કી પ્રસિદ્ધિ કરના ન્યાય કી દ્રષ્ટિકોણ હૈ ન્યાય કી દ્રષ્ટિ બહુ સૂક્ષ્મ બહુ કમી હો જાતી હૈ
પર્યાય
કે દો અંગ હૈ આપ દર્પણ દેખીએ પરિસર કાચ હમારે મુંહ કે સામને રખતે થે તો હમરી મુખ કી આકૃતિ આઈ ઉસકે પહેલે વો નીચે પડા થા ઉલ્ટા તો કોણ સી આકૃતિ થી ઉસમે
કુલી જમીન
ઉધર લગ ગયા જમીન તો ક્યાં કો દૂર હો તો આકૃતિ આવે તો ધર ગયા તો ઇસકી આકૃતિ ક્યાં આયેગા કોણ દેખેગા ઇસકી આકૃતિ બીચ મે કોઈ દેખને વાલા તો હૈ નહીં ઓર આકૃતિ ભી આતી હૈ નિરાકૃત અવસ્થા હો તો આકૃતિ ઉઠ સકતી હૈ લિખે કાગજ પર લિખા નહીં જાતા કોરે કાગજ પર લિખા જાતા હૈ લિખે કાગજ પર લિખા જાતા હૈ ક્યા લિખા તો કોરે કાગજ પર લિખા જાતા એસે વો નિરાકૃત અવસ્થા મે આકૃતિ ઉઠતી હૈ મૂળ નિરાકૃત હૈ ઓર અનેક આકૃતિયાં ઉઠ સકતી વહી જગહ હૈ વહી જગહ પે ક્યોંકિ મૂળ નિરાકૃત હૈ ઇસલિયે અગર આકૃતિ પર તો આકૃતિ ઉઠ ભી નહીં સકતી दूसरी आकृति आ सकती है वही दर्पण में इसका कारण क्या कहो खुद निराकृत है इसलिए मूल में तो इसकी मूल दशा तो वो है कौन से जो निराकृत अवस्था है वही इसकी मूल दशा है आकृति वाली मूल दशा नहीं है वो तो उत्तर दशा है उसका ऐसे ज्ञान में अनेक ज्ञाकार वाला ज्ञान है ये ज्ञान की मूल स्थिति नहीं है मूल दशा नहीं है ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है ऐसी बात है और जो निराकार
प्रकाश शक्ति में मिक्स करी स्वच्छता शक्ति प्रकाश शक्ति मिक्स करी ने वो जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान
से अपने को एक बार शुक्र विचार करो एक ज्ञान मा सामान्य ज्ञान है ये स्वभाव सदृश है जीवो त्रिकाणी स्वभाव है એવું જ એ સામાન્ય જ્ઞાન છે એટલે ગુણ પર્યાયના ભેદને નિરસ્ત કરવામાં આવે તો એ જ આત્મા છે કેમ કે ત્યાં વેદન છે અને એટલે 17 ગાથામાં કીધું છે કે અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે ખરેખર તો ત્યાં જ્ઞાન વેદન છે અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે એ જ ભગવાન આત્મા છે એ જ બધાને વેદનમાં આવી રહ્યું છે ડાબી બાજુમાં ઉપરનો પારિગ્રાફ
નાખી
કાવ ઉપર લેતા આવજો તો આપડે બધાને જ્ઞાન સામાન્ય ને જ્ઞાન વિશેષ નું પ્રકરણ ચાલ્યું છે 15મી ગાથા સામાન્ય નો અભિભાવ કરવો વિશેષ જ્ઞાન નો પૂછા ગુરુદેવ કો સ્વામી જ્ઞાન સામાન્ય તો ત્રિકાલી કી બાત હૈ કે પર્યાય કી બાત હૈ તો અહીંયા પર્યાય કી બાત હૈ તો વહાં લિખા હૈ પર્વત કથા કરો જો વાત સ્પષ્ટ આઈ કે પર્યાય કી બાત હૈ કી બાત હૈ લેકિન વહાં દ્રવ્ય પર્યાય કા ભેદ નિરસ્ત હો જાતા હૈ અનુભવ મેં ઓર આશ્રય હો જાતા હૈ સામાન્ય પર આશ્રય હો જાતા હૈ ત્રિકાલી પર વેદન હો જાતા હૈ એસે વેદન સે લક્ષ્ય હોતા હૈ લક્ષ્ય પૂર્વક વેદન કા આવિર્ભાવ અનુભૂતિ હોતી હૈ દોનો એક દૂસરો અપૂર્વક હો જાતા હૈ
વેદ નિરસ્ત હો જાતા
હૈ બતાએંગે ઇસલિયે દ્રવ્યગુણ પર્યાય કા ભેદ જ્ઞાન માત્ર મેં નહીં હૈ ઉસી કો જ્ઞાન માત્ર કહેતે હૈ એસે બાત હૈ જ્ઞાન મે ભી જ્ઞાન સાકાર હૈ અને કુછ સચો સ્વરૂપ નિશ્ચિત કર સકતે હૈ વેદન સે પર અનુભવ ગોચર હૈ તો અનુભવ મે જો ચીજ આતી હૈ ઉસકા સ્વરૂપ હમ નિશ્ચિત કર સકતે હૈ કે યે આમ કા એસા સ્વાદ હૈ શક્કર કા એસા સ્વાદ હૈ દ્રાક્ષ કા એસા સ્વાદ હૈ તીનો ચીજ મીઠી હૈ લેકિન તીનો કા સ્વાદ ભેદ હૈ ક્યો અનુભવ મે આતા હૈ તો ઉસકા સ્વાદ કો નિશ્ચિત કરના ક્યોંકિ વો સાકાર હૈ એસા તો ઉસકા નિશ્ચિત હોતા હૈ કે એસા હૈ એસા હૈ ઇસકા નામ સાકાર બના હૈ એસે જ્ઞાન સાકાર હૈ ક્યોંકિ અનુભવ સે નિશ્ચિત હોતા હૈ ઓર દૂસરા પ્રગટ હૈ ત્રિકાલી પ્રગટ નહીં હૈ એ પ્રગટ હૈ અનુમાન કરના પડતા
નહીં હૈ એ સસંવેદ્યમાન
ઇસમેં થોડા બહોત વાત ભરા હૈ
જય તમે જો